ओम शांति।
हमने जिनको अपना साथी बना लिया हो, जिन्हें भगवान ने समझा हो योग्य कि मेरे साथ संसार को बदलने में मेरे काम आएंगी ये आत्माएं, वो कितने भाग्यवान हैं। तो हम सभी भगवान के साथ अब हीरो पार्ट बजा रहे हैं और जन्म जन्म ब्रह्मा बाबा के साथ, उसकी आत्मा के साथ हीरो पार्ट बजाएंगे। तो हम अपने अंदर समानता धारण करें, ब्रह्मा बाबा जैसी भी स्थिति और शिव बाबा जैसी भी समानता, दोनों बहुत समान हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा समान हैं, हमें उनके समान बनना है। बहुत ऊंची मंजिल भी है, जैसा शिव बाबा है वैसा ही हमें बनना है। हम इस बात से समझ सकते हैं कि जब इस संसार में हम में से अनेक आत्माएं बाबा जैसी बन जाएंगी, तो संसार में कितने भगवान दिखाई देंगे, कितने भगवान दिखाई देंगे, बोलो। जो जिधर देखेंगे भक्त लोग, वो ये कहेंगे कि तो भगवान ही भगवान है। तो सर्वव्यापकता के सिद्धांत का बीज कलयुग के अंत में हमारे द्वारा ही पड़ता है। उसका दोष नहीं, पर वो एक प्रैक्टिकल चीज है। जब सभी भगवान जैसे दिखाई दें, चमकती हुई ज्योति, उस जैसा तेज, उस जैसी शक्तियां, जैसे वो सहारा है, हम भी सहारे बन जाएं संसार के, तो लोगों को ये मानने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि भगवान के अनेक रूप हैं। ये जो इंडियन फिलोसॉफी में बहुत सारे कंसेप्शंस भगवान के बारे में बताए गए हैं, उन सब की स्थापना हम कलयुग के अंत में यानी प्रत्यक्षता के समय में कर देंगे। तो सभी भगवान के स्वरूप हैं। लोग इस पे तर्क करते आए, डिबेट्स करते आए हैं हजारों साल से। किसी ने कहा सब भगवान के स्वरूप नहीं हैं, तो किसी ने कहा हैं। तो अब हम प्रैक्टिकल अपने स्वरूप को बाबा जैसा बनाकर संसार में बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। ये समय समीप आता जा रहा है जब इस धरती पर स्पिरिचुअल लहर, एक रूहानी लहर इतनी ज्यादा फैल जाएगी कि संसार का हर मनुष्य अपने लिए और भगवान के लिए ही सोचने लगेगा। बाकी जो कुछ सोच अब है, बाह्य मुक्ता का सोच, वो सब खत्म हो जाएगा। तो आज बाबा का बहुत ही अच्छे इशारे मुरली में हम सब ने सुने। बहुत गहरी मुरली है, न केवल चिंतन के लिए, लेकिन अपने को उसके अनुसार ढालने के लिए। बनना है हमें वैसा ही परम पूज्य। बाबा ने कितने अच्छे शब्द बोले, जो ऐसे परम पवित्र हैं, बाप भी उन्हें परम पूज्य की नजर से देखता है और सारा परिवार भी परम पूज्य की नजर से देखता है और उतना ही सम्मान करता है। तो वास्तव में हम सभी को इस एक बात को बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि हमारी पवित्रता जो हमें परम पूज्य बनाती है, इस संसार के लिए वरदान है। हमारे पवित्र वाइब्रेशन इस संसार के लिए सहारा देने वाले हैं। हमारी पवित्रता ही संसार के लिए लाइट है। इस बात को भी ध्यान रखते हुए, क्योंकि हमें हीरो पार्ट बजाना है, तो हमारे द्वारा कहीं संसार में अंधकार न फैल जाए, हमारे किसी भी अपवित्र वृत्ति के द्वारा आत्माओं का अकल्याण न हो जाए, ये हमें अच्छी तरह अपने अटेंशन में रखना है। बाबा ने आज एक बहुत ही सूक्ष्म लाइन बोली, पहली हार वृत्ति की हार है, संकल्प से भी पहली इम्प्योरिटी के क्षेत्र में माया से हार है वृत्ति की हार। हमारी फीलिंग्स दूसरे के लिए बुरी हो गई, चाहे वो काम की हो या क्रोध की हो, अहंकार की हो, बुरी फीलिंग हुई, माया की हार हो गई। तो हमें हीरो पार्ट बजाना है अब भी और पूरे चक्र में भी। सत्युग त्रेता में हीरो एक्टर हैं वो जो विश्व का राज संभालते हैं, और द्वापर और कलयुग में हीरो एक्टर वो हैं जो अपनी शक्तियों से धर्म की रक्षा करते हैं, जो अपनी शक्तियों से अपने देश की रक्षा करते हैं। जब देश पर किसी भी तरह का संकट आता है, जब धर्म पर किसी भी तरह का संकट आता है, तो हम सभी हीरो एक्टर्स जिन्होंने यहां से बाबा से पवित्रता और शक्तियों का वरदान प्राप्त किया है, इस वरदान के आधार से हम जन्म जन्म अपने देश की, भारत की विशेष, क्योंकि और देशों पे इस तरह के संकट नहीं आए जिस तरह के भारत पर आए हैं। अपने देश की और अपने धर्म की दोनों की रक्षा करते हैं, उसमें भिन्न भिन्न तरह से भिन्न भिन्न समय पर हम आत्माएं पार्ट बजाएंगी। तो हमें हीरो पार्ट बजाना है। बहुत ऊंची नजर से बाबा हमारी तरफ देखता है। हम जब अपनी तरफ देखते हैं तो हम अपने बारे में बहुत कम जानते हैं, या तो कमी देखते हैं अपनी। जब बाबा कहता है चेकिंग करो अपनी, अपने अंदर देखते हैं तो हमें कमियां दिखाई दे जाती हैं, या वर्तमान का थोड़ा नशा हमें रहता है। लेकिन बाबा जब हमारी तरफ देखता है तो क्योंकि वो पूरे चक्र में हमने क्या क्या पार्ट बजाए हैं इसको जानता है, इसलिए उस महान दृष्टि से देखता है और फिर से अपनी दृष्टि से हमारे अंदर पवित्रता और शक्तियों का बल भर देता है। उसकी दृष्टि को यहीं से नहीं पड़ती जब वो नीचे आ जाता है, लेकिन उसकी दृष्टि ऊपर से भी रोज हमारे ऊपर पड़ती है। और हम में से कुछ हीरो एक्टर्स तो ऐसे भी हैं जिन पर रोज उसकी दृष्टि पड़ती है, जिन जो उसकी नजरों में हैं, वो कुछ गलती नहीं कर सकते। अगर सोचते भी हैं गलती करने की तो पकड़ लेता है बाबा कान, कहां जा रहे हो, क्या सोच रहे हो। वृत्ति की भी गलती होती है, भावनाओं की भी गलती होती है। जरा सी शुभ भावनाएं ढीली भी पड़ जाती हैं तो हीरो एक्टर्स का बाबा कान पकड़ लेता है, उन्हें याद दिला देता है कि नहीं, तुम किसी के लिए अशुभ भावनाएं नहीं रख सकते हो। तुम्हारी अशुभ भावनाएं संसार का अकल्याण कर देंगी और तुम्हारी शुभ भावनाएं संसार के लिए छत्र छाया है, वरदान है। तो इसी दृष्टि से आज बाबा ने हम सबको पहली बात याद दिलाई थी, जो हमारी प्रैक्टिस है, जो हमारी साधना है, तपस्या है, कि जैसे साकार में नेचुरल रूप से रहते हो या साकार में आने में देर नहीं लगती है, सोचना ही नहीं पड़ता, आप ही आ जाते हैं, वैसे ही निराकार स्थिति भी सहज हो जाए। और जिनकी निराकार स्थिति सहज हो गई वही समानता है, कर्मातीत स्थिति की समानता है, बाप की समानता है। इसलिए आज टॉपिक रखा गया निराकारी, आकारी और साकारी स्थिति। दो चीजों के रूप में हम इसको देख लें। बाबा निराकार है परम धाम में, नीचे उतरता है, सूक्ष्म लोक में आता है, आकारी बन जाता है, और नीचे उतरता है, हम सब ने देखा, वो साकारी बन जाता है। जब निराकार आकार में आकर साकार में आ जाता है, तो हम देखते हैं अपनी आंखों से कि वो उसके बाद भी साकार में रहते हुए भी लगता है निराकार ही है। साकार में आते हुए लगता है जैसे आकार ही है। बात करता है, ज्ञान देता है, प्यार भी देता है, अपनी श्रेष्ठ भावनाएं भी देता है, लेकिन तो भी दिखाई देता है न्यारा है। उसका सबसे सब कुछ लेना देना भी है, लेकिन जैसे उसका किसी से कुछ लेना देना न हो, इतना डिटैच, इतना लविंग, इतना प्यार का सागर कि लगता है जिसको हम देखना चाहते थे वो सामने आ गया है, लेकिन इतना डिटैच कि जब जाता है तो जैसे उसका कोई नहीं है, दिखता है ना ऐसे। ये निराकार की स्थिति है। निराकार आकार में आया, फिर साकार में आ गया। हम सबने देखा, जो पहली बार आए हैं वो अब देखेंगे यहाँ, और अच्छी तरह देख लें कि निराकार जब साकार में आ जाता है, इसके बाद भी वो कैसे निराकार ही रहता है। दूसरी स्थिति है हम सबकी, जब हम अपने घर में हैं तो निराकार हैं, नीचे आ जाते हैं, सूक्ष्म वतन से होते हुए नहीं आते, सीधे नीचे आ जाते हैं, साकार बन जाते हैं। और हमारा साकार स्वरूप कितना महान है, कितना आकर्षक, दिव्य और पूज्य है। सतयुग का आदि स्वरूप, सतयुग के मध्य का और अंत तक का भी स्वरूप वो हम सब जानते हैं। अब जब हमें वापिस जाना है तो निराकार होकर तो जाना है, लेकिन उससे पहले इस संसार में आकारी स्थिति प्राप्त करके फिर जाना है। आकारी स्थिति का आनंद लेना है साकार में। आकार बन जाएं और आकार स्थिति में कौन कौन से गुण और लक्षण हमारे जीवन में आ जाते हैं उसका अनुभव करें, संसार में रहें, और इस तरह रहें कि हम संसार में जैसे रहते ही नहीं। ब्रह्मा बाबा के अपने अंतिम बहुत अच्छे अनुभव थे। बाबा बोलते थे कि बाबा इस तन में ऐसे रहते हैं जैसे यहाँ रहते ही नहीं, बाबा कार्य ऐसे करते हैं जैसे कुछ करते ही नहीं। हम सब सोचते थे शिव बाबा बोल रहा है, पर ये ब्रह्मा बाबा की स्थिति हो गई थी कि ऐसा कार्य करते हैं जैसे कुछ नहीं कर रहे, और ऐसे रहते हैं जैसे यहाँ नहीं रहते। तो इन्हीं स्थितियों को हमें प्राप्त करना है, जो इस साकार स्वरूप में रहकर अपने आकारी स्वरूप का बहुत अच्छा अनुभव कर लेंगे, वो इस आकारी स्वरूप के द्वारा आने वाले समय में, ऐसा कहें अगले 5-6 सालों में हीरो पार्ट बजाएंगे। जिन्होंने लंबे समय से स्थिति का अभ्यास किया है, निराकारी से आकारी स्थिति बनती है, निराकारी स्थिति के अभ्यास से फरिश्ता स्वरूप बनता जाता है। जिन्होंने लंबे समय से इसको अभ्यास किया है, अब अभ्यास होगा उनका, अब अनुभव होगा, एक सेकंड में सोचा और स्थित हो गए। इन तीनों ही चीजों पर हम थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। बाबा की सभा में कुछ नए बच्चे बाबा के बैठे हैं, जो इन सब के बारे में सोचते होंगे और सुनते होंगे। निराकारी स्थिति का बिल्कुल सहज अर्थ है, कुछ इसको हमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, बहुत सिंपल। आत्मा देह से पूरी तरह अपने को न्यारा अनुभव करें, इस तरह हम इसको डिफाइन कर लें कि जब आत्मा अपने को देह से मुक्त परमधाम में अनुभव करती है तो निराकारी स्थिति, और जब आत्मा अपने को देह से मुक्त, देह में रहते हुए ही अनुभव करती है तो आकारी स्थिति कहलाती है। जब आत्मा आत्मा बनकर यहाँ साकार में रहते हुए बुद्धि योग के द्वारा परम धाम में चली जाती है तो उसे परम धाम की स्वीट साइलेंस का अनुभव होने लगता है। कि परम धाम को शब्द दिया गया है स्वीट साइलेंस होम। केवल साइलेंस होम नहीं, ऐसी साइलेंस जिसमें बहुत स्वीटनेस है, बहुत मधुर है, जो बहुत आकर्षित करती है आत्मा को। तो जब हम अपने योग अभ्यास में परम धाम में स्थित हो जाते हैं तो पहला अनुभव स्वीट साइलेंस का होने लगता है, क्योंकि परम धाम में आत्मा में सब कुछ मर्ज रहता है, वहां कोई एक्टिविटी नहीं होती। हमें अनुभव होने लगेगा जितना अधिक समय हम परम धाम में रहेंगे हम सब कुछ भूल जाएंगे, पास्ट मेमोरीज या पास्ट के संस्कार सब भूल जाएगा, फ्यूचर की चिंताएं या पास्ट की स्मृतियां सब भूल जाएंगी। ये दूसरा सुंदर अनुभव होगा परम धाम में निराकारी स्वरूप में रहने से। ये बहुत बड़ा प्रश्न है बाबा के बच्चों के सामने भी और संसार के सामने भी कि पास्ट को कैसे भूलें। बहुत कुछ कहा जाता है, हम लोग भी बहुत कुछ सुनाते हैं सुनते हैं कि पास्ट को भूलने की शक्ति चाहिए, नथिंग न्यू का अभ्यास करो, जो बीत गया वो तो 5000 साल के बाद ही रिपीट होगा, अभी क्यों रिपीट कर रहे हो। ये सब जानते हुए भी हम रिपीट करते रहते हैं। लेकिन अगर हम परम धाम की स्थिति में अपने को ले चलें तो हमें स्वतः ही सब कुछ भूल जाता है, वहां के वाइब्रेशंस सब कुछ भुला देते हैं। तीसरा अनुभव, जब हम उस स्थिति में स्वयं को स्थित कर लेंगे तो क्योंकि वो स्थिति मास्टर बीज है, जैसे बाबा कल्प वृक्ष का बीज वहां रहता है, हम जब वहां रहने लगते हैं तो हम भी मास्टर बीज रूप हो जाते हैं और उतने ही शक्तिशाली जितना सर्वशक्तिवान है। बीज शक्तिशाली होता है तो हमें शक्तिशाली स्थिति का अनुभव होगा। और जब हम इस तरह बीज बन जाते हैं, एक दूसरा अनुभव हमें ऑटोमेटिकली होगा कि जैसे बीज, स्थूल बीज एक वृक्ष के लिए सब कुछ है, जड़ों के द्वारा वृक्ष को पानी जाता है, खाद जाती है और बहुत सारी एनर्जी जाती है बीज और जड़ों के माध्यम से। जब हम परम धाम में स्थित हो गए तो हम मास्टर बीज हो गए, वहां से हमारे वाइब्रेशंस सारे कल्प वृक्ष को स्वतः ही जाते रहते हैं, तो हम मास्टर पालनकर्ता बन जाते हैं उस स्थिति में। ये हमें फायदे होंगे निराकार स्थिति के, और हमें इसके लिए अभ्यास करना होता है कि मैं आत्मा इस देह को छोड़कर उड़ती हुई परम धाम में पहुंच गई बाबा के पास, उसकी किरणों के नीचे और कुछ नहीं, निरंतर उसकी किरणें हमारे ऊपर पड़ रही हैं। बाबा की मुरलियों में सकाश की बात बहुत आ गई है और इसके बारे में अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं कि हम अपनी ही सकाश दूसरों को देते हैं या हम बाबा के इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं दूसरों को सकाश देने के लिए। ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है। वास्तव में सत्य तो यही है कि हम बाबा के इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं उसकी सकाश सारे विश्व को देने के लिए। हमारी सकाश ऑटोमेटिकली संसार में फैलती है, लेकिन अगर हम केवल अपनी सकाश देते हैं तो वो सारे विश्व तक नहीं जाएगी, उसकी कुछ सीमा हो जाएगी, कुछ लिमिटेशंस हो जाएंगी। बाबा से जो सकास हमें आती है, जो वाइब्रेशंस ऊपर से हमें आते हैं, वही हमारे माध्यम से इस सारे संसार में फैलते हैं। तो इस बीज रूप में स्थित होकर हम बाबा से सकास लेकर सारे संसार में फैला सकते हैं। मुझे यहाँ एक बात और कहनी है, कई लोग दूसरों को सकास देने के लिए एक अभ्यास करते आए हैं कि अगर उसे कुछ आत्माओं को सकास देनी है तो वो उन्हें इमर्ज करते हैं सूक्ष्म वतन में, बाबा के सामने रखते हैं और बाबा को कहते हैं बाबा आप इन पर दृष्टि डालो, इनका कल्याण करो। ये बात लगती तो ठीक है, इसमें कुछ गलत तो नहीं है, ऐसा भी किया जा सकता है, लेकिन बाबा ने अपनी मुरलियों में एक बहुत अच्छा उत्तर दिया है इस बात का। मुझे याद रहती हैं वो बातें 75 की मुरलियों में बाबा ने कहा कि बच्चे बाबा से रुझान करते हैं कि बाबा फलाने की बुद्धि का ताला खोलो, फलाने को बहुत परेशान रहता है, आप शांति दो। तो बाबा ने कहा कि ये बात तुम्हें बाबा को कहने की जरूरत नहीं, ये काम तुम कर सकते हो। जो कुछ बाबा ने तुम्हारे लिए किया है वही काम तुम्हें दूसरों के लिए करना है। उसने तुम्हारी बुद्धि का ताला खोला है, अब तुम उसे नहीं कहो कि इनकी बुद्धि का ताला खोलो, अब तुम दूसरों की बुद्धि का ताला खोलो। तो इसमें हमें जानने की बात यह है कि बाबा की सकास को इस संसार की अपवित्र आत्माएं रिसीव नहीं कर सकती। अगर कर लेती होती तो बाबा हमें इंस्ट्रूमेंट क्यों बनाता, सोचने की बात है। फिर तो बाबा डायरेक्ट उनको सकास न दे दे, दे सकता है वो, लेकिन आत्माएं थोड़ा ही रिसीव करेंगी, ज्यादा नहीं। एक और सूक्ष्म रहस्य, बहुत सूक्ष्म, कल्प वृक्ष को हम ध्यान में लाएं, हम जुड़े हुए हैं बीज से और संसार की अनेक आत्माएं जुड़ी हुई हैं हमसे, ये कनेक्शन है। भगवान का कनेक्शन मनुष्य आत्माओं से किस तरह है, तो हम कुछ महान आत्माएं हीरो एक्टर्स जुड़े हुए हैं शिव बाबा से, और हमसे जुड़ी हुई हैं कुछ आत्माएं, कुछ माना बहुत लाखों करोड़ों, तो हम डायरेक्ट ग्रहण कर रहे हैं सर्वशक्तिवान से, और जो हमसे रिलेटेड हैं वो ग्रहण करती है हमसे। जैसे बाबा कहते हैं कि हनुमान भगत को अगर शिव बाबा का दर्शन हो जाए तो वो नहीं खुश होगा, कहेगा हनुमान दिखाओ। क्यों? क्योंकि वो रिलेटेड है हनुमान से। भगवान उनके सामने खड़ा हो वो कहेगा नहीं, मुझे तो संतोषी माता ही चाहिए, क्योंकि वो उससे जुड़े हुए हैं। तो हम बाबा से सकास लेकर, वाइब्रेशंस लेकर संसार में फैलाते हैं, और ऑटोमेटिकली जिसको जो चाहिए वो उनको प्राप्त हो जाता है। जैसे हमारा बाबा है, हम और आत्माओं के इष्ट देव हैं, हमारे वाइब्रेशंस, हमारी शुभ भावनाएं, सूक्ष्म अच्छी फीलिंग्स हमारे भक्तों को या हमसे रिलेटेड आत्माओं को तुरंत सुख देने लगती है। इसलिए बाबा ने कभी कहा है तुम आधार मूर्त हो, तुम हंसोगे तो संसार हंसेगा, तुम रोओगे तो संसार रोएगा, तुम उदास रहोगे तो संसार में उदासी छा जाएगी, तुम आनंदित रहोगे तो संसार के टेंशन खत्म हो जाएंगे। हमें अपने इस महानता को समझकर इस तरह अपनी निराकारी स्थिति को सुधारना चाहिए। दिन में कई बार सवेरे और शाम विशेष रूप से, और दिन में कामकाज करते हुए भी कुछ कुछ क्षणों के लिए अपने को चार्ज करने के लिए, अपने में शक्तियां भरने के लिए जंप लगाकर, उड़कर अपने को परम धाम में बाबा की शक्तियों के नीचे बैठा देना चाहिए और ये स्थिति अभ्यास करते करते नेचुरल हो जाएगी। बस जैसे हम साकार में हैं, वैसे एक सेकंड में संकल्प के द्वारा निराकारी स्थिति में स्थित हो जाएंगे। आकारी स्थिति, पहले हम साकारी स्थिति को ले ले, क्योंकि हमारी दूसरी स्थिति निराकार के बाद साकार है सत्यु में। साकारी स्थिति का ये अर्थ नहीं कि हम देहधारी हैं अब तो हम साकार में रहें, ये नहीं। साकारी स्थिति का अर्थ है कि हम अपने साकार स्वरूप के पहले पहले स्वरूपों को स्मृति में लाएं। हम देवी देवता थे, हम इष्ट थे, संसार की जन्म जन्म हमने पालना की है, ऐसे महान हम रहे हैं जिनको आज मंदिरों में देखने से संसार के अनेक मनुष्य पवित्र हो जाते हैं। इतना स्वच्छ है वो हमारा स्वरूप कि उसके दर्शन करने से भक्त स्वच्छ हो जाते हैं। इतना शक्तिशाली है हमारा वो स्वरूप कि उनके दर्शन करने से भक्तों के विघ्न नष्ट हो जाते हैं। तो हमारे दो साकारी स्वरूप हो गए जिनकी स्मृति हमें संपूर्णता की ओर ले चलती है। एक है आदि स्वरूप देव स्वरूप और दूसरा है अंतिम शिव शक्ति स्वरूप। दोनों को हम अपनी स्मृति में रखा करें, इससे हमारा जीवन बदलता जाएगा। हमें अपने संस्कार बदलने हैं और विचार बदलने हैं। दो चीजों का परिवर्तन हमारे इस जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, संस्कार और विचार। श्रेष्ठ विचार और दिव्य संस्कार, और हम एक एक संस्कार को दिव्य बनाने की, एक एक विचार को बदलने की मेहनत न करें, अपने आदि स्वरूप और अंतिम शिव शक्ति स्वरूप को स्मृति में इमर्ज रखें, बस वो सारे संस्कार हमारे अंदर आते जाएंगे। स्मृति हमारे संस्कारों का निर्माण करती है। आज भी बाबा की मुरली में था, स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा। जो इन दो स्थितियों को धारण कर लेंगे वही हीरो एक्टर्स होंगे। हमें स्मृति आ जाए, इस पर ये अलग एक टॉपिक है, बहुत सुंदर। आप सभी अपने लिए इस पर चिंतन करें कि कौन सी स्मृति हमें दिव्य संस्कार देती है, और इसमें सबसे ज्यादा मदद करता है हमें स्वदर्शन चक्रधारी होना। स्वदर्शन चक्र जिसको एक मिनट में नहीं घुमाया जाता कि हमने 8 जन्म सत्युग में लिए, 12 त्रेता में, 21 द्वापर में, कलयुग में 42, एक संगम पर पूरे हो गए, अब क्या करेंगे, पूरा हो गया घर चलेंगे, ये नहीं। इसको हम कुछ भागों में बांट लेते हैं। अपने आदि स्वरूप को अपने सामने खड़ा कर लो, मैं सिंपल भाषा बोल रहा हूं, अपने पहले आदि के, जब हम सत्यु में उतरे थे तब हम कैसे देवता थे, उसको कोशिश करो विजुअलाइज करने का, उसको अपने सामने खड़ा करो। ये मेरा स्वरूप है, विष्णु स्वरूप, नारायण स्वरूप या श्री लक्ष्मी का स्वरूप, ये मेरा स्वरूप है, और अपने को याद दिलाओ ये मेरा स्वरूप है। एक समय था जब हम ये थे, धीरे धीरे ये बात नशे में आती जाएगी। इस पर हमें कुछ समय बिताना चाहिए, अपने इस स्वरूप को अपने में मर्ज करना चाहिए। एक बहुत साकार सी प्रैक्टिस हम इसके लिए कर सकते हैं कि जैसे आप थोड़ी देर के लिए एक संकल्प करें कि ऊपर से हमारा दिव्य स्वरूप आदि स्वरूप नीचे उतरता है और हमारे इस स्वरूप में समा जाता है। हम हो गए विष्णु, डबल ताजधारी, चार भुजाधारी, पालन करता, और चलो जरा 5 मिनट के लिए विष्णु बनकर विष्णु स्वरूप के संस्कार जीवन में आने लगेंगे, स्मृति स्वरूप स्थिति हो जाएगी, नशा चढ़ने लगेगा। पहला अभ्यास ये होना चाहिए। दूसरा अभ्यास, ये सब अनुभव हम आधा युग आधा कल्प करते रहे, उसके बाद भक्ति में हम हीरो पाठधारी रहे। मंदिरों में हमारी मूर्तियों के आगे भक्त आते हैं, वरदान पाकर जाते, अपना वरदानी स्वरूप याद करो, वो मैं हूं। जिस सरस्वती की मंदिरों में पूजा हो रही है, जिस दुर्गा से लोग शक्तियां मांग रहे हैं, जिन शक्तियों की मंदिरों में रोज आराधना हो रही है, वो मैं हूं। पहुंच जाओ जरा, सीन लाओ अपने सामने एक के एक दुर्गा का मंदिर है, हजारों भक्त ये करें। तीसरा स्मृति स्वरूप का अभ्यास है, अपने साकार स्वरूप का अभ्यास है। ये कौन मिला है अब हमें, कौन साथी है हमारा, आज भी बाबा की मुरली में था, जरा इस नशे की ओर चलो, कौन साथी है हमारा। और अंतिम बात कि ये शरीर छोड़कर अब जाना है, जाने की स्मृति, जाने की स्मृति हमें बहुत सेफ रखेगी, अंत में डिटैच रखेगी। जाना है सबको, हमारे मन को निश्चिंत करेगी, जाना है। अब साकार में हम भगवान के साथ हीरो एक्टर हैं। बाबा ने पीछे अभी मुरली में कहा कि बाबा को आना है, बाबा आता है अपने बच्चों के मुखड़े देखने, भगवान को आना होता है हम सब को देखने के लिए। जैसे लौकिक में एक बाप अपने बच्चों के मुखड़े देखकर खुश हो जाता है, माँ बाप सब माताओं को पिताओं को अनुभव है ना, जब तक अपने बच्चे को न देखें कुछ होता रहता है, अंदर गड़बड़ होती रहती है, अशांति होती रहती है, स्थिरता नहीं होती। बच्चे को देखा शांति हो गई, भगवान को तो शांति की बात नहीं, लेकिन वो भी अपनी महान आत्माओं को देखकर हर्षित अवश्य होता है, क्योंकि वो तो केवल एक बार पाठ बजाता है और वो अवश्य इस दृष्टि से देखता है कि मेरी ये महान आत्माएं जन्म जन्म इस संसार की पालना करेंगी, वो हमारी पालना करता है और फिर हमें सौंप जाता है संसार को कि अभी इसकी पालना तुम करो। तो हम इतना ले लेते हैं बाबा से, तो पालना करते रहते हैं संसार की हजारों साल, भक्ति में हमारी मूर्तियों के द्वारा पालना होती रहती है। ये है साकारी नशा, आदि का भी, मध्य का भी, अंत का भी। अब हम जब साकार में हैं, तो क्या क्या मिल गया है हमें ये साकारी स्थिति, और अगर हम इसी स्थिति में रहेंगे तो साकार में रहते हुए भी हमें ऐसा नहीं लगेगा कि हम साकार में हैं, हमें ऐसा लगेगा कि साकार में तो हम हैं पर हैं भगवान के साथ। आकारी स्थिति जिसे हमें प्राप्त करना है, इस शरीर के अंदर हम आत्माएं सूक्ष्म शरीर के साथ रहती हैं सदा ही, आत्मा और शरीर को जोड़ने वाला बीच में सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर लाइफ एनर्जी है, उसका बड़ा महत्व है हमारे जीवन के लिए। हम निरंतर अपने सूक्ष्म शरीर को शक्तियां देते रहते हैं मन से, मन के संकल्पों से, और यही कारण है। अब जो ज्ञान में बहुत समय से है वो समझ सकते हैं कि जो लंबा समय इस एंजेलिक स्टेज का, इस आकारी स्टेज का अभ्यास करते रहेंगे, अभ्यास करते करते उन्हें ऐसा लगने लगेगा कि जैसे ये स्थूल शरीर की स्थूलता, इसका भारीपन समाप्त हो गया है और ये बहुत कोमल हो गया है, ये बहुत लाइट हो गया, वेटलेस हो गया है, ब्रह्मा बाबा का यही स्वरूप शरीर का भी था, शरीर भी निर्मल दिव्य आकर्षक करने वाला, आकर्षित, ये आकर्षण नहीं जो देह का आकर्षण होता है, लेकिन शरीर से भी जैसे दिव्यता वाइब्रेट हो रही हो, शरीर से भी जैसे प्योरिटी वाइब्रेट हो रही हो, ऐसा स्वरूप ये आकारी स्थिति से आता है। तो हमारे सूक्ष्म शरीर के वाइब्रेशंस हमारे स्थूल शरीर की इम्प्योरिटी को नष्ट करते चले जाते हैं, कर्मेंद्रियों की स्थूलता को, कर्मेंद्रियों के आकर्षण को, कर्मेंद्रियों की इम्प्योरिटी को हमारा आकारी स्वरूप स्वच्छ करता जाता है, निर्मल करता जाता है। इस संसार में रहते हुए, हम शरीर में रहते हुए जब फरिश्तेपन का अभ्यास करते हैं, एक था आत्मा बनकर परम धाम में जाना, दूसरा है मैं इस देह में फरिश्ता हूं ये अनुभव बढ़ाना, बुद्धि इस संसार से अलिप्त हो गई हो, डिटैच हो गई हो, इस संसार में रहते हुए भी हमारी बुद्धि संसार को न छूती हो, इस संसार में रहते हुए भी ये संसार हमारी बुद्धि को न छू रहा हो, ये आकारी स्थिति हमारे इस जीवन को इजी बना देती है। इजी ये भी एक प्रश्न है, बहुतों का आता है कि संसार में रहते हुए भारपन होता है जीवन में, कभी मन उदास होता है, खुश नहीं रहता, आनंदित नहीं रहता। संकल्पों के द्वारा भी हम अपने भारीपन को खत्म कर सकते हैं, बाबा जिम्मेदार है, हम अपने को समर्पित कर देते हैं, निश्चिंत रहते हैं, परंतु आकारी स्थिति का अभ्यास नेचुरल रूप से हमारी लाइफ को लाइट बनाता चलता है, सब कुछ लाइट, संस्कार भी लाइट तो विचार भी लाइट, हमारे कार्य और जिम्मेदारी भी लाइट, ग्रस्त में रहते हुए परिवार की पालना करते हुए भी लाइट। और जो आत्माएं इस तरह आकारी स्थिति का अभ्यास करते हैं, उन्हें संसार में रहते हुए, ग्रस्त में रहते हुए कठिनाइयां नहीं होती, प्रॉब्लम्स नहीं आती। चाहे आप अकेले ज्ञान में चलते हैं, परिवार आपका विरोध नहीं कर सकता, फरिश्तों का कोई क्या विरोध करेगा, फरिश्तों का विरोध होता ही नहीं। विरोध तो तब होता है जब हमारे मन में उनके लिए विरोध है। चेक कर ले आप, हमारे मन में उनके लिए गलत फीलिंग्स हैं, घृणा है, तब विरोध है। अगर हम अपनी प्योरिटी में स्थित हो जाएं, तो प्योर आत्मा का भी संसार में विरोध नहीं होता, प्योर आत्मा में भी बहुत आकर्षण है। जैसे संसार में नाम रूप का आकर्षण है, पवित्रता में उससे 1000 गुना आकर्षण है, जो संसार को आकर्षित करती है अपनी ओर। तो हम अपने इस आकारी स्वरूप को भी बढ़ाएं, आकारी बनकर अब अंतिम समय विनाश के खेल में हमें कई तरह से पार्ट बजाना है, उसकी स्पष्ट झलक, स्पष्ट रूपरेखा हमारे पास होनी चाहिए। बाबा बहुत पहले से ये बात हमें कहते रहे कि लोग तुम्हारे सामने आएंगे, मान लो तुम्हें मारने के लिए, और तुम उन्हें दिखाई नहीं देंगे, कहेंगे अभी तो यहीं थे, कहां चले गए। ये आकारी स्वरूप के अभ्यास का रिजल्ट होगा, निराकारी अभ्यास का भी रिजल्ट होगा कि हम होंगे वहीं, लोगों को दिखाई नहीं देंगे। और हिंदी में एक बहुत अच्छा शब्द इसके लिए प्रयोग किया जाता है, अंतर्ध्यान हो गए, डिसअपियर हो गए, अभी तो दिख रहे थे, अपियर थे, अभी डिसअपियर हो गए, अंतर्ध्यान हो गए, कहां चले गए पता नहीं। तो लोगों को चमत्कार लगने लगेगा। इसी आकारी स्थिति के द्वारा अगर हम इसको डेवलप करेंगे, तो भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर हम आत्माओं की मदद कर सकेंगे, यह आकारी स्थिति बाबा कहते रहे हैं बहुत श्रेष्ठ तेज गति से चलने वाला वाहन है। एक ही समय में हम अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा अपने अनेक आकारी रूप भी क्रिएट कर सकते हैं। ये बात शायद आपके लिए नहीं हो, परंतु ये जाननी चाहिए कि जितने जितने हम संपूर्णता के समीप जाएंगे, जितने जितने हम शक्तिशाली बनेंगे, उतना उतना शक्तियों के आधार से एक स्थान पर बैठे एक ही समय में हजार या उससे ज्यादा अपने एंजेलिक फोन क्रिएट करके भिन्न भिन्न स्थानों पर हम सेवा कर सकेंगे। और हमें ऐसा अनुभव होगा, मैं एक स्थूल उदाहरण दे रहा हूं, कि जैसे हम पतंग छोड़ देते हैं आकाश में, रस्सी हमारे हाथ में होती है, कंट्रोल हमारे हाथ में होता है, तो हमें ऐसा लगेगा कि हमसे निकलकर हमारे आकारी स्वरूप संसार में अलग अलग जगह स्थित हो गए और रस्सी हमारे हाथ में है सबके। और जो हम यहां सोचेंगे, जो हम यहां वाइब्रेट करेंगे, वो वहां होने लगेगा। लेकिन इसके लिए शरीर से डिटैच होने का लंबे समय का अभ्यास होना चाहिए। ये बहुत सुंदर अनुभव होंगे, अभी तो बहुत थोड़े थोड़े होते हैं, होते होंगे, और जो नए बाबा के बच्चे उन्हें ये सोचने की जरूरत नहीं। जब हम ये कह देते हैं कि लंबे समय की प्रैक्टिस के बाद ये अनुभव होंगे, तो नए सोचते हैं कि हम तो एक दो साल से ज्ञान में आए हैं और विनाश सामने आ गया, तो हमें तो टाइम ही नहीं मिलेगा, हम कैसे ये अनुभव करेंगे। लेकिन ये जानना चाहिए कि समय की मदद, बाबा की एक्स्ट्रा मदद अब हम सब के साथ है, और जो कार्य दूसरी आत्माओं ने 30 साल में, 20 साल में, 50 60 साल में किया होगा, वो 5 6 साल में भी होने लगेगा। अगर हम सच्चे दिल से इन अनुभवों को करना चाहेंगे तो हमारे द्वारा ये अनुभव होंगे। तो हम अभ्यास किया करें कि मैं इस तन में फरिश्ता हूं। सिंपल सी ड्रिलिंग ड्रिल के इससे निकलकर बाहर गए, ऊपर पहुंचे, वापिस आ गए। शुरू में ये प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए डिटैचमेंट के लिए। फरिश्ता बाहर निकला, अंदर प्रवेश किया, बाहर निकला, अंदर प्रवेश किया। इन सभी स्थितियों के लिए हम पहले साकारी स्थिति पे ध्यान देंगे, नशे की स्थिति, स्मृति स्वरूप की स्थिति, आकारी और निराकारी। ये जरूरी नहीं कि इस क्रम से ही हम चलें, हम इमीडिएट निराकारी स्थिति में पहुंच सकते हैं, बाद में साकारी नशे में रह सकते हैं। पहले आकारी स्थिति का अभ्यास कर सकते हैं, फिर निराकारी में जा सकते हैं, पहले निराकारी में जा सकते हैं, फिर आकारी में आ सकते हैं। इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं, जो हमें सहज लगे, जब जिस स्थिति का सहज अनुभव होने लगे वही करनी चाहिए। हमें इस बात की कोई जरूरत नहीं कि हमें तो निराकार स्थिति में जाना है और हम अपने से युद्ध करते रहें और आधा घंटा युद्ध में बिता दें। अगर हमें निराकार स्थिति भारी लग रही हो कभी, कामकाज के कारण, किसी समस्या के कारण, तो बिल्कुल सिंपल विधि है, स्मृति स्वरूप में स्थित हो जाओ, अपने को नशे में ले आओ। मैं कौन हूं और मेरा कौन है, मैं कौन और मेरा कौन, मेरा साथी कौन, किसने मुझे कहा है कि मैं तुम्हारा जिम्मेदार हूं, तुम निश्चिंत हो जाओ। कौन परछाई की तरह हमारे पीछे पीछे चल रहा है, कौन छत्र छाया बनकर हमारे सिर के ऊपर चल रहा है, इस चिंतन में अपने को ले आओ। हमेशा ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि अपने सभी संकल्पों को कंट्रोल करने की ज्यादा खींचातान नहीं करनी है। साकारी नशे के द्वारा, स्मृति स्वरूप के द्वारा हम अपने मन को सहज ही कंट्रोल कर सकते हैं और एक अच्छी स्थिति में स्थित हो सकते हैं। इन तीनों ही अभ्यास के लिए साकारी स्थिति दोनों अभ्यास के लिए बहुत मदद करती है, परंतु हमें कुछ चीजें और अपने जीवन में अटेंशन में रखनी चाहिए। अगर हमें इस अलौकिक जीवन का सुख पाना है, अगर इन स्थितियों की ओर हमें चलना है, तो पहली बात हम वैराग्य धारण करें व्यर्थ की बातों से। वैराग बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, परंतु हम इसको शुरू करते हैं अपने जीवन में व्यर्थ से वैराग। कभी कभी हम पुरानी दुनिया से तो वैराग करने लगते हैं, पर व्यर्थ से वैराग नहीं कर पाते। इसलिए व्यर्थ से वैराग होगा तो व्यर्थ हमें खींचेगा नहीं। नहीं तो अगर सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो व्यर्थ में जो व्यक्ति रस लेता है, व्यर्थ में जो आत्मा रहती है, इसे सिद्ध है कि उसका व्यर्थ से लगाव है। और ये लगाव की सूक्ष्म रस्सियां आत्मा को आकारी और निराकारी नहीं होने देती। इसलिए जिनको महान लक्ष्य को पाना हो, जिनको हीरो पार्ट बजाना हो, उन्हें अब धुन लगा देनी चाहिए अपनी मंजिल की ओर चलने के लिए। व्यर्थ में तो सारा संसार है, व्यर्थ में तो सभी मनुष्य उलझे हुए हैं। हमें नहीं उलझना है, हमें तो अपने वाइब्रेशन से ये व्यर्थ का जो पॉल्यूशन संसार में है, इसको नष्ट कर देना है। हमारी शक्तियों की लेजर किरणें, लेजर बीम इस संसार से व्यर्थ के वाइब्रेशंस को जला के नष्ट कर देंगी, ऐसा हमें अनुभव करना है। दूसरी चीज, व्यर्थ से मुक्ति रखनी है, इंटरेस्ट नहीं रखना है उसमें। दूसरी चीज, अपने लक्ष्य की ओर हमें स्वयं को डेडिकेट करना है, लक्ष्य को भूल नहीं जाना है। आप अपने जीवन के लिए कुछ 5-6 बातें सिद्धांत के रूप में बना लें और उसको अपने पास रख लें, रोज रिवाइज किया करें। जैसे मेरा लक्ष्य क्या है इस जीवन का, और इसके साथ जोड़ दें कि कोई भी परिस्थिति या कामकाज, बिजी लाइफ मुझे अपने लक्ष्य को भुला नहीं सकती। दूसरी चीज, मुझे इस जीवन में पूरी तरह से लाए रहना है। भगवान जिम्मेदार है मेरा, सर्वशक्तिमान जिम्मेदार है, मुझे लाइट रहना है, कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं। तीसरी चीज, संगम युग खुशियों का वरदान लेकर हमारे लिए आया है, इसलिए छोटी मोटी बात में मैं अपनी खुशी को गुम नहीं कर सकती, खुशी को नहीं खो सकता। ये मैंने उदाहरण दिया आपको। आप इस तरह अपने जीवन के कुछ डिसिप्लिन्स बना लो, उससे आपको बहुत मदद मिलेगी जीवन में। जब भी कोई बात आए रोज उन्हें पढ़ लो, जब भी आए तब पढ़ लो, 5 या 10 ऐसे अच्छे थॉट्स अपने पास रख लेंगे तो वो थॉट्स आपके लिए सहारा बन जाएगा जीवन में, और उससे आत्मा को सुख मिलेगा और इन तीनों स्थितियों को अभ्यास करने में बहुत बल मिलेगा। बस चर्चा को तो यहीं समाप्त कर देते हैं। अभी आधा घंटा हम सब योग करेंगे। पहले 10 मिनट स्वमान में स्थित होंगे, नशे में विष्णु बनकर बैठ जाएंगे सभी, इस संकल्प से कि हमें अपने वाइब्रेशन से संसार की पालना करनी है। दूसरे 10 मिनट मैं फरिश्ता हूं इस तन में, उड़ के ऊपर चलेंगे और ऊपर स्थित होकर फील करेंगे कि हमसे वाइब्रेशन सारे संसार में जा रहे हैं। उसके बाद 10 मिनट हम उड़कर चले जाएंगे परम धाम में, ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे, सर्वशक्तिवान की किरणों के नीचे, और फील करेंगे निरंतर उसकी किरणें आ रही हैं। ओम शांति।